वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरक्तिः हे कृष्ण करुणा सिंहो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामसुते प्रणमामि हरि आ देवी काकू हर गद गद याद्यवाचा जाचे निपक्त भूवि दंडवत उद्भटार्ति अस्य प्रसादम मुखस्य जनस्य दृष्ट्वा गंधर्विके तव गणे गणनन्दितो संगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्द्रे जाड्यञ्जाबुदरोचि सांविदतम कट्टम्बरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदिलशब्दानाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं भक्त्या विभिन्ना परागलक्षे चित्वामि कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्रब्रजन्तं एतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो संसर्वभूतहृदयं मुनिमा सवैवास्मि सवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं। भक्ति प्रेमा भक्ति को पाने के लिए जैसे हम लोग कल आगरा गए, वह एक सुंदर बगीचे में देखा, बगीचे में बड़े बड़े गेंदे के बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले, सुंदर सुंदर क्यारियां, और उसमें बीच बीच में मान लिया बेली चमेली जूही इत्यादि के फूल। उसी के बीच में एक जगह आम का वृक्ष है, उस पर कोयल कुहू कुहू कर रही है। बीच में एक मान लिया उसमें कदम्ब का वृक्ष है, मयूर और मयूरी उस पर बैठे हैं, केका केका कर रहे हैं, भौंरे गुंजार कर रहे हैं। उस दृश्य को देखा इच्छा हुई जैसे ऐसे ही फूल हमारे बगीचे में भी हो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लोभ। ब्रजरूपी उपवन में बनने देखा सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, ये लोग नहीं, अब लोग होता है जैसे अच्छे भाई ये कैसे मिलेंगे फूल जो हम अपने बगीचे में इसको उगा सकें, तो वो क्या करेगा व्यक्ति, माली बंद करके उससे पूछेगा भाई इसके बीज कहाँ मिले, तो वो कहेगा इसके कलम बांधे जाते हैं, एक एक कलम के दाम 20-20 रुपए हैं, फिर रुपया लेकर के गया उसका कलम या बीज ले आया अपने बगीचे में लगाया, पानी दिया समय पर, वो बढ़ने लगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्ण यौवन अवस्था में जब फूल आए और उसमें फूल लग गए और वैसे ही मधु यहाँ पर आकर के झंकार करने लग गए और वहाँ का पूरा वायुमंडल वातावरण ही उस सुगंध से भरपूर हो गया, उसको देख करके माली को कितना आनंद होता है। ऐसे ही प्रेमा भक्ति है, ब्रज के बगीचे में है, उसको दृश्य काव्य के रूप में कहो या श्रवण काव्य के रूप में, दृश्य मैंने गुरुजी या जो पुस्तकें हैं उनमें वर्णन के अनुसार या गुरु और वैष्णव के मुख से उसके विषय में श्रवण कर लिया। वृंदावन के फूल पुष्प क्या है, बेली चमेली जूही सब है ना, ये है गोप गोपी, तरह तरह के फूल हैं, रंगीन रंग बिरंगे, कृष्ण उस बगीचे के मालिक हैं, उसको देखकर के लोभ होता है। इसी यही लोग रागानुगा भक्ति कहलाती है। गोप गोपियां किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं प्रेम से अनुराग से, और यदि उसके प्रति लोभ हो तो वो लोग को कैसे पथ दिखाएंगे, उसी के लिए ये प्रेम भक्ति की चंद्रिकाएं हैं, ये किरणें हैं, कैसे उसको पाएं, जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। मैं विद्वान बनूंगा, धनी बनूंगा, कर्मी बनूंगा, ये सब ये जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य क्या, इस प्रेम भक्ति को पा करके जन्म जन्म के लिए भव सागर को पार कर जाएंगे, फिर जगत में जन्म नहीं होगा और मरण इत्यादि भी नहीं होगा, इससे ऊपर उठ करके इस बगीचे में पहुंचेंगे जहाँ पर गोप गोपियां जी ये वहां रहते, और उसको कृष्ण की कैसे ये सभी सेवा करते, हम भी वैसे ही सेवा करते, तो ये कैसे होगा, तो पहले बीज जलाना पड़ेगा। ये बीज क्या है, सबसे पहले मैंने गुरु जी की वंदना की, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, जिनकी कृपा से सब आशाएं पूर्ण हो जाती है, अर्थात प्रेम प्रेमा भक्ति का बीज उनसे मिलता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए
भक्ति लता दे,
जो लोग कहेंगे ये स्वयं में वेद रूपी या शास्त्र रूपी वन में या खजाने में घुस करके मैं खुद ही ले आऊंगा, इतना विशाल वो साम्राज्य, वहां से बीज मिलना बड़ा तारी कठिन है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु अब कृष्ण की कृपा से ये मिलेगा, बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि लोग नारद प्रभृति, सुखदेव गोस्वामी प्रभृति अन्वेषण करते हैं जन्म जन्मांतर तक ब्रह्मा इत्यादि इस प्रेमा भक्ति के लिए। ब्रह्मा जी को तो अभी तक है ही नहीं, वो तो सृष्टि व्यापार में एकदम व्यस्त है। कौन सी सृष्टि, दिन में बनाते हैं और रात में सब समाप्त ध्वंस हो जाता है, ये सब कुछ नहीं रहता। उनके दिन का मान और रात का मान यदि विचार करें तो हम लोगों का दिन और रात उसके में एक सेकंड नहीं, एक भी सेकंड नहीं है, वो इतनी बड़ी उनकी रात और दिन है। वो ही जब ध्वंस हो जाता है तो ये संसार में ये सब कुछ देखने में सुख जैसा लगता है किंतु है दुख का आकार, अभी नहीं मालूम होता, पीछे से मालूम होता है। तो इसलिए कहते हैं इस संसार में यदि किसी को ऐसे सदगुरु मिल गए और भक्ति लता का भी उनके हृदय में उन्होंने वपन कर दिया, बो दिया, तो फिर वो धीरे धीरे भक्ति, पहले उसके घास इत्यादि निकले उसको निगोड़ना पड़ेगा, उसके लिए रक्षा का प्राचीर या कटैले तार इत्यादि देकर के रक्षा करना पड़ेगा, दूसरे जानवर इसको चर न जाए ये सब देखना पड़ेगा। धीरे धीरे वो लता ऐसी होती है ये ब्रह्मांड भेदी पर्व में जाए, इस ब्रह्मांड को भी भेद करके चली जाती है। इस ब्रह्मांड में क्या है, दो दुआ स्वामाजन तपस्ता और वहां के सुख है एक एक से पढ़कर, यहाँ पर जो सुख की कल्पना करते हैं ना, एक गरीब आदमी सुख की कल्पना करता है यदि हम कहीं स्कूल में चपरासी भी हो जाए तो 1000 रुपये महीने मिल जाए, जब वो हो गया तो सोचता है कि यदि हमें एक घर रहने के लिए अच्छा सा हो जाए, विवाह शादी हो, लड़के हुए, खाने की भी इच्छा सब तरह से पूर्ण, उत्तर उत्तर बढ़ते 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 ब्रह्मा जी का जैसा है ना सुख साधन और प्रभाव वैसे होने की इच्छा होगी, वहां पर भी पेट भर जाएगा, उससे भी विरक्ति आ जाएगी और अंत में यदि इधर में रुचि हुई तो उसका जीवन सार्थक होगा, अन्यथा ये जीवन मिला और ऐसे ही चला गया। इसलिए उन्होंने कल बतलाया था यदि इसको कोई पाना चाहे, उसी की किरण यहां दे रहे हैं, रास्ता बतला रहे हैं, अभी जो बतला रहे हैं उपाय ये सब चंद्रिकाएं हैं, चंद्र की किरणें हैं, प्रेमा भक्ति है ये चंद्र ना, और उसकी चंद्रिका माने किरणें हैं जो प्रकाश देती हैं जीवन में, ऐसे मालूम नहीं होगा यह रास्ता कौन सा है कहां है, ये होने पर होगा। असत चेष्टा ना करी हो, असत चेष्टा देखो जगत में यहां जन्म लेने पर बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के अभाव होते हैं, बहुत तरह के विषय होते हैं, इसके लिए व्यर्थ प्रयास मत करो, न तब प्रयास हो तब प्रत्यय जैसा आयु बया कर, आयु व्यय है, आयु व्यय, दूसरे लोगों से मत कहो जो अनाधिकारी है, वो समझेंगे भी नहीं उपहास भी करें। मनुष्य जीवन केवल ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही है, उसका जीवन धन्य हो गया, किसी मनुष्य का प्रेम पाने के लिए ये जीवन नहीं है। हम ये शरीर ही नहीं, हम हैं आत्मा, वो प्रेम यदि मिला तो कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे और हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसलिए दूसरी दूसरी प्रकार की जो इच्छाएं हैं, विषयों को पाने की लालसा और किसी का स्नेह, इसमें यहां तक ब्रह्मा और शंकर इंद्र प्रभृति दुर्गा देवी और जितनी देवता देवी हैं, इन लोगों को भी प्रसन्न करने की चेष्टा करना हमारा कर्तव्य है, बल्कि तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, उनकी प्रसन्नता से सबकी प्रसन्नता हो, इसलिए उनकी भी नहीं, तो संसारी और सबकी तो बातें है ना, करना असत चेष्टा कृष्ण को पाने के अतिरिक्त, कृष्ण का प्रेम लाभ करने के अतिरिक्त जितनी भी चेष्टाएं हैं वो असत चेष्टा है, न सप वो सब असत चेष्टा है। मैं संसारिक वैभव पाने के लिए अपना 24 घंटा उसी में नियुक्त करता हूं, और वह वैभव जो ज्ञान लेने का कारण बन जाता है। श्रीमद् भागवत में श्लोक है कोई, ये जो आत्मा को हनन करने वाला ये अर्थ संबंध, तो विक्रम महाराज जी बोलते हैं नित्यार्थ देन भित्तेन दुर्लभेन आप यदि अधिक वैभव हो गया ना प्राण के लिए खतरा उपस्थित कर देता है, जीवन को चंचल कर देता है, अशांत बन जाएगा ना? आसपास के लोग क्या करेंगे, देख करके जलेंगे और ऐसा करेंगे वो सब कुछ ले, इसलिए अशांत हो। यहां तक कि लोग उसको मार करके भी उसको ले लेने की चेष्टा कर, आजकल पुत्र अपनी मैया को बाप को भी मार करके लेने की चेष्टा कर, आज ही नहीं वो प्राचीन काल से ही ऐसा है, अर्थ ऐसा ही है। न तत्प्रयास कर्तव्य, इसके लिए जो करता है आत्ममृत्यु ना आत्ममृत्यु का कारण। दुर्योधन कल मैं बतला रहा था वहां प्रसंग वस्तु, दुर्योधन क्यों मारा गया, उसने कहा कि सात ग्राम की बात बतलाते हो, एक सुई के नोक के बराबर भी तुम्हें जमीन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे सात ग्राम दे देता और पूरा राज्य भोग करता, उसने नहीं। और कृष्ण ने जानबूझ करके सात ग्राम जो मांगे ना उसमें हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गांव रख दिए थे जो उस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था वो। कृष्ण तो चाहते थे युद्ध, नहीं तो भूभार कैसे हरण होगा, बड़े चतुर। उसने ताव में आ गया वो और बोला कि मैं सात सुई की नोक भी नहीं दूंगा, ये ग्राम की तो बात कर पा भाई, युद्ध में हम मारा गया, हम सब लोग मारे गए, तो वो किस लिए मारा गया, किसी वैभव के लिए। अंत में उसके पूरे परिवार में सौ भाइयों की शादी हुई थी, लड़के इत्यादि सब थे, किंतु एक आदमी तर्पण करने वाला उसके वंश में नहीं रहा, तो अर्जुन भीम इत्यादि ने उत्तर, उस समय इनके भी वंश में कोई नहीं था, अभिमन्यु इत्यादि मारा गया था, गर्भ में केवल उत्तरा का एक लड़का था और तर्पण करे कौन, इन पांच, मतलब ऐसी परिस्थिति आई इस वैभव के लिए। इसलिए आत्ममृत्यु ना, हम लोग के पास भी अभी यदि किसी प्रकार से जोड़ जाड़ करके 100 रुपया रखेंगे ना, चित्त को चंचल कर देगा, शुद्ध कर देगा, क्या करें, कहां रखें, कैसे करें, उनको दें कि न दें, क्या सकते, कोई जान लिया तो गड़बड़ हो जाए, इस तरह से चित्त चंचल करने वाला है। तो ये अर्थ हमारा स्वार्थ नहीं हुआ, इससे ऊपर में स्वर्ग, स्वर्ग में जाकर के सुख मिलेगा, वहां से फिर त्रिशंकों की भांति सिर नीचे करके पैर ऊपर करके गिरना पड़ेगा। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम खिने पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं भ्रम त्रय काम काम आलम थे, स्वर्ग में गए और ये करके व्रत इत्यादि करते हैं, इसलिए या तो वैभव के लिए नहीं तो स्वर्ग के। कुछ लोग इसके भी समझ करके ये भी जीवन में सुखदायी नहीं होता, कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, क्या मुक्ति, वो मानव समझते हैं कि मरने के बाद में हमारी मुक्ति हो गई। किसी को जीवन में बड़ा कष्ट हो रहा था, अभी पेपर में देखा दो, एक लड़का एक लड़की, दोनों की शादी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि अब एक साथ में ही मर गए, बस एक साथ में भीख खा लिया और दोनों परस्पर को पकड़े हुए, बस उनको मिल गई मुक्ति। मुक्ति इतनी सारी नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषि लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, लाखों वर्ष तक मुक्ति होती, मुक्ति माने और कभी भी पुनरागमन न हो, कभी भी जन्म न हो, माता के जठर में ना आना पड़े, कभी भी दुख की छाया नहीं, ये मुक्ति। मुक्ति में भी सुख नहीं, केवल दुखों की छुटकारा है। सुख कहां है, जहां प्रेम है भगवान के प्रति। तो यदि इस प्रेम की लालसा है तो असत चेष्टा मत करो, अचत चेष्टा माने क्या है, सुंदर बिछौना, सुंदर ओढ़ना, सुंदर सुनहला चश्मा, सुंदर अपने शरीर के लिए नहीं, मन को प्रसन्न करने के लिए कोई भी इंद्रियों का विषय वो सब किसी काम का, इसके लिए समय मत क्या करो, मुक्ति के लिए भी मत करो। अरे और की तो बात क्या, साकेत धाम अयोध्या धाम के लिए, मथुरा और द्वारका के लिए भी मत करो। ब्रज का करें हम ब्रज का करो, किंतु उसमें भी तात्पर्य के अनुसार नहीं करो। ब्रज में भी कमल इत्यादि रक्त पितक इत्यादि कृष्ण के दास कोई उनके सखा है, कोई उनके सुबल इत्यादि सखा, श्रीधाम इत्यादि सखा, ये उनके एक एक से सखा लोग हैं। उनका जब वर्णन देखते हैं ना चित्त आह्लादित हो जाता है। यशोदा मैया का प्रेम कृष्ण के प्रति अद्भुत है, उससे भी बढ़कर के गोपियों का भाव प्रेम ये सर्वोच्च है। बताते हैं कि यदि उसकी लालसा हो तो बस एक लालसा रखो अनन्य रूप में रखो, और कोई असत चेष्टा मत करो, कोई भी विषयों को पाने के लिए मन में न कामना करो न उसके लिए इंद्रियों के द्वारा प्रयास करो। पहले खाना पीना कैसे चलेगा वो छोड़ दो कृष्ण के ऊपर में, यदि ऐसा उन्नत हो गए तो, और नहीं तो अब उसके अनुकूल ये सारी चेष्टा के द्वारा अपना उदर पूर्ति और ये सब करो जो अनुकूल हो, और प्रतिकूल को छोड़ करके चलो। तो ना कोई अवसर चेष्टा लाभ पूजा प्रतिष्ठा, जिससे कि संसारिक लाभ और पूजा माने भोगोपकरण और प्रतिष्ठा सबको आदमी छोड़ देता है। एक आदमी भजन करना चाहता है, ठीक है सभी जानते हैं, कोई लड़की है मान लिया भजन करना चाहती है, या कोई लड़का है अभी छोटी उम्र का मान लिया, लड़की के घर वाले कहेंगे देखो हमारे परिवार का नाम दुर्नाम हो जाएगा, खबरदार मत मिलो, जैसे कि
मीराबाई
इत्यादि। अजी हमारे कुल की कितनी, हम लोग कितने ऊंचे वंश के, कितनी बड़ी बड़ी बात ना, ये बदनामी का डर, और ये कितने प्रकार की होती है। सब छोड़ दिया किंतु प्रतिष्ठा की लालसा हृदय से नहीं जाती, मैं कारण हमारी भी नहीं जाती, छोड़ने की चेष्टा करता हूं नहीं जाती। नारद तक की नहीं गई, बड़े बड़े ऋषि लोगों का नहीं जाता है, नारद जी का तो चला गया, किंतु हम लोगों को दिखलाने के लिए वो ऐसा स्वांग रचते हैं मानो हमारी प्रतिष्ठा की लालसा नहीं गई। मुक्त पुरुष हैं, इसलिए इन सब चीजों को छोड़कर सदा चिंता गोविंद चरण, सदा गोविंद की चिंता करो, चरण की चिंता कैसे करें, कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं ऐसा नहीं, उनकी समस्त लीलाओं के साथ में अधिकारियों के साथ में श्रवण करके तो उसकी चिंता। इतना सुंदर मनोहर है, यदि कोई व्यक्ति सौभाग्य से गुरु वैष्णव से सुना और उसमें डूब जाएगा ना तो डूबी जाएगा, फिर उसे निकलना नहीं चाहेगा, वो ऐसा सुंदर उनकी लीला करता है। सकली विपत्ति जावे महानंद सुख पावे प्रेम भक्ति परम कारण, सकल विपत्ति जावे, सब प्रकार की दैहिक मानसिक समस्त प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाएंगी, मुक्ति का दुख भी दूर हो जाएगा, और या प्रेम भक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी जी की शिक्षाष्टक यहाँ पर ले आते हैं। वो कहते हैं यदि इस प्रेम को पाने की, वो चंद्रिका को पाने की इच्छा है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु, गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, गोष्ठ गोष्ठ माने गो इष्ट, इंद्रियों का जो इष्ट है उसके संबंध में जहां पर कोई बात करता है, जहां पर लीलाएं होती हैं, जहां पर वो कथा कथन होता है, यह है गोष्ठ, जैसे नंद बाबा का गोष्ठ, यह सब गोष्ठ। तो गुरु गोष्ठ हे मन शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के चरणों में अत्यंत आसक्ति से प्रतिभा पूर्वक रखो, उनकी सेवा करो और गोष्ठ के प्रति खूब सेवा करो, मन के द्वारा शरीर के द्वारा जैसे गोष्ठ सब समय उनका चिंतन करना ही रागानुगा भक्तों के लिए। जैसे मान लिया कि नंदगांव पहुंच गए, नंदगांव में हम फिर कदम्ब पहुंच गए, फिर कदम्ब को प्रणाम किया, वहां के लीला का स्मरण करने लगे। राधा जी उधर से आ रही हैं अपने सखियों के सहित, कुंद लता जी उनको ला रहे हैं। इधर में कृष्ण बहुत देर से गौओं को दुहने के बहाने डेरा जमाए हुए हैं, बीच में जाओ की तरफ देख रहे हैं। जब वो आने लगी तो इन्होंने देखा, उन लोगों ने भी देखा। राधा जी कहती हैं कि कोई और दूसरा ब्रजराज के भवन में जाने के लिए नहीं है क्या, मैं इस पथ से नहीं जाऊंगी। कहती तुम इतने में ही डर गई, अरे पूर्णमासी जी ने कहा है कोई डर की बात नहीं, उनको सांत्वना देती है। उनके कहने से तुम इतनी धीरू हो, उनको कह करके समझा बुझा करके कृष्ण गोदोहन कर रहे हैं, निकट में आ गए हैं रास्ते के जिससे जा रहे हैं, और धक दोहन करते करते एकदम धार मारा लगे, समस्त एकदम फैल गए। सखा लोग हंसने लगे, ये भी हंसने लगे, इन सब लीलाओं का स्मरण। शाम हो जाती है, कृष्ण तेर कदम पर बैठ करके और वहीं से धवली कृष्णा गोदावरी जमुने पिशंगी धवली शुक्ले ये सब नाम लेते हैं गाय, और वो सब एकदम दौड़ करके हमारा वो करती वहां पर पहुंच जाती है, सब गायन को लेकर के वहां से चलते हैं। वहां पर सुनते हैं रूप गोस्वामी जी उसी तेर कदम्ब के लीला को स्मरण करने के लिए, स्तुति कराने के लिए वहीं पर आते थे। जंगल सांपों का अड्डा है, सांपों का अड्डा वहां है और चोरों का अड्डा डकैतों का। आजकल वहां आदमी नहीं रहते, दिन में जाते हैं दर्शन करके चले, रात में कोई लोग वहां पर साधु लोग भी संत लोग वहां जा करके भजन करने की चेष्टा की तो रात में आए डकैत दो चार थप्पड़ मार दिया, जैसे आप आइंदे से मत आना नहीं तो टांग उन तोड़ देंगे, दो एक आधा टांग भी तोड़ दिया, एक तो मर ही गया। तो इसलिए साधारण साधक वहां पर, वो ऐसा साधक होगा जो प्रभावशाली अगस्त ऋषि की भांति रूप गोस्वामी की भांति हो और सब समय इधर धरने अभी भी। तो वहां पर सुनते हैं रूप जी वहां पर भजन करते थे, यदि वो विरह की कविताएं लिखते तो उसके पत्ते कदम्ब के वृक्ष के एकदम सब गिर जाए। और फिर मिलन की सुखमय लीला का वर्णन करते कोई श्लोक, नए नए कोपरों पत्ते के लाल लाल निकल जाती और फिर हरा भरा वृक्ष हो जाता है। सनातन गोस्वामी कभी उनके पास में पहुंच गए दोनों भाइयों में। रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो पाठ करने लगे और दोनों की टीकाएं परस्पर बात सब चलने लगी, मिलन और विरह की बात ही सब। करते 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 समय क्या ज्ञान नहीं रहा, दोपहर हो गया, बिना खाए पिए दोनों बात। एक छोटी सी लड़की आई 10-12 वर्ष की, बोले जे बाबा तुमने कुछ अभी खाया नहीं, आज बात रमे हुए हो, मेरी मैया तुमको देख गई और दूध और चावल भेजा है, तुम लोग इसको फिर बना लेना। ये कह करके अभी मैं जाती हूं तो मैया मुझे कहे ये कहां देर लगा दिया, इन लोगों ने उसको देखा भी। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने देखा जी ये तो सुने नहीं बाबा, फिर लौट करके चले। अरे बाबा तुम लोग मेरी बात सुना नहीं, अच्छा तुमको फुर्सत नहीं है मैं ही बना दूं। ये कंडे ले आई, न जाने कैसे उसे जला दिया, उस पर रख दिया और मिनटों में उसे बहुत सुंदर खीर बना दिया। न जाने क्या क्या दिया यहाँ का गुण, और रसमय स्वादिष्ट मधुर सुगंध युक्त वो हो गया। बाबा तुम लोग बातचीत करने के बाद में इसे पा लेगा, मैं पूजा ठाकुर जी को भोग लगा लेना। चलिए सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने सोचा जैसे आज उनको कुछ खिलाया नहीं, कुछ खिलाना चाहिए। अच्छा वो लड़की तो बना करके दे गई, यही दे दू, भोग दिया और उनको दिया। सनातन गोस्वामी उसका सुघ्राण और उसका सुंदर मधुर टेस्ट करके एकदम भाव जोर होकर के कृष्ण कृष्ण करने लगा। जैसे उस लड़की को पहचानता है जो ये दे गई, मैंने देखा तो था, छोटी सी बालिका थी, देखा तुमने तो, मैंने तो ख्याल किया नहीं, मैंने सुना बहुत सुंदर सुर से बोल रही थी, हमने देखा जो लड़कियों की तरफ में ध्यान देने की जरूरत, हम लोग अपने काम में, तो उसे वो बना करके रख गई, इसमें कितना टेस्ट है। मैंने सोचा कि ये कोई दूसरी नहीं हो सकती, उसके हाव से भाव से सौंदर्य से, साधारण रूप में तो उसमें तो मालूम नहीं हुआ, किंतु जब देखा था ये दुर्भाषा के वर से, अरे दुर्भाषा को भी वर देने वाले हैं उसके वर से, क्या दुर्भाषा जी को भी वर दे दें, और वो सुंदर बना करके गई। टेस्ट करते ही आंख से आंसुओं की धारा गिरने लगी, भाव भी बोल रूप, छोटे भाई जैसे रूप खबरदार है साहब कभी मत कर, तुमने कोई इच्छा की थी? हाँ मैं उसी कथा के अंदर में मैंने सोचा कि कहीं शायद खीर मिल जाती तो बड़े भैया को हमारे गुरु भी हैं इनको कुछ खिला, कुछ भी हमारे घर में यहाँ नहीं है। इतने में वो आ गई और ये सब व्यवस्था हुई, पर ये वो स्वयं राधिका जी थी, तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसा किया, आएंगे से कोई कामना मत करना, कहाँ तुम उनकी सेवा करेगा और हम उनकी सेवा करेंगे, वो हमारे लिए सेवा करके और प्रस्तुत करके देंगे। बस दोनों आदमी प्रेम करने लगे, वहां जाकर के मन के द्वारा या यहीं से उन सब परिक्रमा का ये सब विधि है। परिक्रमा की विधि वैसी जैसे हम लोग करते हैं वो ऊपर से वैसी विधि नहीं, कृष्णानुसंधान राधानुसंधान ये सब परिक्रमा इत्यादि का ये साधन भजन यथार्थ है, ऐसे भाव दीप एक एक स्थान के लिए। ब्रज में ऐसे लाखों स्थान है कृष्ण की लीला के स्वर, तो यही कहते हैं ये सब का इस प्रकार से चिंतन करना सेवन करना। जैसे एक आदमी ने मुझसे पूछा आपने खा लिया, तो मैंने उत्तर दिया तो मैं तो कभी खाता ही नहीं, कहते जीवित कैसे रहते हैं क्या कहते हैं, अरे हम लोग तो प्रसाद सेवा करते हैं। तो ऐसे ही सब चीज जैसे प्रसाद की सेवा पहनना है ना पहनो मत, वस्त्र सेवा कर लिया राधा जी को कृष्ण को दे करके उतरे हुए को लेकर के सेवा के उपयोगी। उसी तरह से कोई भी क्रिया में तुम कर्ता मत बनो, कीर्तन की सेवा करो, हरि कथा का सेवन करो, जैसे कृष्ण कृष्ण कहकर के सभी काम करते हैं ना वहां पर गुंडीचा मंदिर में, ऐसे ही हम लोग सब चीजों में अपनी सेवा शब्द लगा भावना के द्वारा सेवा लगा। ऐसा यदि हो जाएगा ना तो ये भक्ति का आधार, जहां जाएंगे ना कृष्ण की स्फूर्ति होगी, महाप्रभु की कैसी स्फूर्ति होती थी इसी तरह से जहां जाते थे ब्रज की स्फूर्ति, एक पेड़ देखा सोचा जी ये तो कदम्ब वृक्ष है, कमाल वृक्ष है, ये वृंदावन है, ये यमुना नदी है, नदी नहीं देखते थे यमुना, पर्वत नहीं देखते थे, देखते थे गिरिराज गोवर्धन, ऊंची भूमि देखा और गोवर्धन, सब ब्रज की भावनाएं वहां पर उत्प्रोत हो जाती थी। तो ये कहते हैं गुरु गोष्ठे, ये सब गोष्ठ का स्मरण है, जहां जहां कृष्ण की लीला है, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेसु, आलेसु माने नंद बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, यशोदा को, विश्वभानु महाराज को, कृतिका सुंदरी को, ललिता विशाखा चित्रा इत्यादि को, बलदेव प्रभु को, इस तरह से सब जितने उनके परिकर हैं, लीला स्थान है, रामघाट का, रामघाट में जाएंगे तो क्या क्या स्मरण करेंगे, या यही पर रामघाट का नाम स्मरण हुआ यदि जाने में तब तो देखेंगे जो बलदेव प्रभु जी वहां आए हैं, द्वारका से या मथुरा से आए हैं गोपियों को सांत्वना देने के लिए। लाखों गोपियां एकत्रित हो गईं, उनकी प्रेयसियां। बलदेव प्रभु जी ने उनके साथ में उनको प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की स्मृति भुलाने के लिए एक नृत्य का स्वांग रखा। और उसमें वो सभी क्लांत जब हो गई, पिपासा उनको लग गई प्यास, उन्होंने जमुना कहा, जमुना कालिंदी इधर आ जाओ, सखिया प्यासी हैं। जमुना जी आई नहीं, वो उधर समुद्र की तरफ में जा रही हैं। अरे तू मेरी बात नहीं सुनती, कहीं नदी बात सुनती है, पर्वत बात सुनते हैं, मिट्टी का ये सब चीजें ये बात सुनते हैं। जानवर से कहो इधर आ जाओ, तो कोई ऐसे सीखे हुए हैं ना, तो वो तो आ जाए। जैसे गैया धीरी धीरी नीरी 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 मैंने तो चू चू पानी
तीरी तीरी
तीरी तीरी मैंने
जल
अपने पास बुलाते हैं, उसके लिए ये सब शब्द हैं, वो सब समझ जाते हैं ना, वो झट चले। कुत्ते को ये देखा ना, टू 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 कर दे, वो समझता है टू टू कर रहा है तो कुछ देगा, बस वो चला आएगा। तो उसी तरह से जमुना जी तो बात सुनेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा जाए आ जाओ जल्दी से, तो वो आई नहीं, आओ इछला करके जा रही है। था बस अपना हल लिया और वहां से ऐसे ही उसको खींच लिया, जैसे किसी चीज को हल में लगा करके अंकुश से लेकर के खींच लेता है, वैसे जमुना जी को खींचा, सीधी ऐसे जा रही हैं और उनको खींचा इधर से यहां लाए, जहां पर जरूरत थी यहां छोड़ दिया, फिर वहां से अभी भी आज वो स्थान है जहां से वो सीधी बहती थी वो भी देखा जाता, और जिसको टेढ़ा करके ऐसे ले आए हैं वो है रास्ता। ये जमुना कौन है बिचारा है? जमुना तीन है, एक समुद्र पथगामी है, समुद्र में जाने वाले सरित पति, इसके पति सरित समुद्र है, समुद्र की तरफ, उनसे इन लीलाओं से कोई संबंध नहीं। एक कालिंदी है द्वारका में, कृष्ण की पाटरानी है, और एक है यहां जमुना वृंदावन में, ये विशाखा जी को ही जमुना कहते हैं, वो कभी पानी का रूप धारण करके और कभी विशाखा का रूप धारण करने वाली कृष्ण लीला की सहायिका है, विशेष अस्त्र शक्तियों में से प्रधाना है ये, इन्हीं की अंश है कालिंदी ना? कालिंदी कौन? द्वारका वाली, और उन्हीं की छाया है सरस्वती वाली। ये जमुना जो है इस लोक में जो बहने वाली जो समुद्र पथगामी भी है वो उन्हीं की छाया। इस तरह से बलदेव जी ने कृष्ण जो प्रिया जो विशाखा जी हैं उनको स्पर्श नहीं कर सकते, उनको देखेंगे ना तो वो सिर ऐसे घूंघट हटा कर निकाल कर और उनको ऐसे सिर झुका करके दूर से प्रणाम करेंगी, उधर देखेंगे भी नहीं। और बलदेव जी क्या करें, उधर देखेंगे नहीं, क्या करें, इसका मतलब क्या?
आशीर्वाद
कल्याण भाव ऐसे, हाँ और कुछ नहीं, उसी की छाया। ये जगत के जितने प्रेम के व्यवहार हैं या रुष्ट होने के व्यवहार हैं सब उसी जगत की ये छाया है, परफेक्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लोब बैक ब्रदर, ये सब है। तो गोष्ठा आलेशु, वहां पर रहने वाले नंद बाबा यशोदा इत्यादि और जो हैं लोग, एक एक की सब लीलाएं हैं। उस आदमी का चिंतन करना मैंने किया, उन लोगों की कृष्ण के प्रति प्रति कैसी, गोष्ठ में जा रहे हैं गोचारण करने के लिए, नंद बाबा यशोदा जी अत्यंत आर्त होकर के रोती रोती हुई उनके पीछे चल रही। कृष्ण ने कहा जी मैं आप फिर जाए, पिताजी अब लौट जाए। नंद बाबा क्या करते हैं, थोड़े से दूर पर खड़े हो जाते हैं ऊंची भूमि पर, उन्हीं से देखते हैं। मैया यशोदा गैया की तरफ में डकरती हुई अपने छोटे से बछड़े के लिए रोती हुई थोड़ी सी थक जाती है कृष्ण कर, और फिर दौड़ करके पहुंच जाती है हम्बा राव करते हुए, और उनको चाटने चूसने लगती है जैसे बच्चे को बछड़े को चाटते।
इस तरह से कृष्ण को फिर बुलाता है। फिर कृष्ण कहते हैं हमारे शरीर का शपथ है और आगे मत जाना। उसमें जाती है, फिर जब कृष्ण थोड़ा से दूर आगे गए बस वो भूल जाती है सब कुछ। जब उनको किसी प्रकार से रोक किया, बलदेव जी को शपथ दिया जैसे तुम जाकर के थोड़ी देर घुमा करके ले आना, सुकुमार कह रहे हैं कांटे गड़ जाएंगे, चुभ जाएंगे, बड़े बड़े दैत्य सुनते हैं रहते हैं, तुम अधिक दूर मत जाना, निकट से उसको घुमा करके ले आना। बलदेव जी कहते हैं कि भैया तुम चिंता मत करो, मेरा शपथ है तुम लौट जाओ, क्योंकि गायें जा नहीं रही। गाय की कैसी अवस्था होती है, कृष्ण घर में अभी उठे हैं, मैया कुछ कलेवा दे रही है, इतने में एक सेवक आया दौड़ता हुआ जहां पर गायें बनती हैं, उसको क्या कहते हैं,
खिड़क,
खिड़क, खिड़क से आया, क्या बात है, वो सेवक आया, कमल आया दौड़ करके, नंद महाराज जी से कह रहा है आज बछड़े गायों के स्तन में लग गए हैं और वो मुख में लात मारकर तुमने हटा रही, स्तन में मानो दूध है ही नहीं, फूले हुए हैं स्तन, फट रहे हैं, किंतु बछड़ों को नहीं दरिया में दूध आ रहा है, सब